بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज गुरुवार है, फरवरी दिन की 3, रमजान की 1 और मार्च की 23 तारीख। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं, जबकि आप यही कार्यक्रम 26 मार्च से शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर लें। सदा की भांति सबसे पहले देश विदेश के समाचार होंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप पहली रमजान के संबंध में सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा के अंत में आप सुनेंगे ईद नवरोज के संबंध में विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री ने यूक्रेन की अखंडता पर बल दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का स्थिर आधार है। हैती में होने वाली हिंसा में अब तक 530 से अधिक लोगों की जान चली गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ हुई टेलीफोनी बातचीत में यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्राप्त समाचारों के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों देशों के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने इस टेलीफोनी वार्ता के दौरान इस्लामी गणराज्य ईरान की सैद्धांतिक नीतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम यूक्रेन सहित दुनिया के सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम युद्ध के भी खिलाफ हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यही कारण है कि तेहरान यूक्रेन संकट के समाधान के लिए हर तरह का सहयोग और मदद करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बल देकर कहा कि इस्लाम विरोधी कार्रवाइयां और इस्लामोफोबिया पश्चिम की नफरत फैलाने वाली नीति और हिंसा का खुला नतीजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ब्रिटेन के बर्मिंघम नगर में आग लगाए जाने वाली घटना की ओर संकेत करते हुए लिखा, एक बूढ़े आदमी को आग लगाना पीड़ादायक है और वो भी बर्मिंघम नगर के लोगों की नजरों के सामने, और उस समय जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इस मामले की जांच करना और उसके परिणामों की घोषणा करना ब्रिटेन सरकार की जिम्मेदारी है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद की उस विज्ञप्ति का स्वागत किया है जिसमें ईरान और सऊदी अरब के मध्य होने वाली वार्ता के परिणामों का स्वागत किया गया है। फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद ने अपनी संयुक्त विज्ञप्ति में शांतिपूर्ण ढंग से ईरान के साथ मतभेदों के समाधान पर बल दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकरी आर्मेनिया पहुंचे हैं। आर्मेनिया के विदेश मंत्री के साथ भेंट में अली बाकरी ने कहा है कि ईरान क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का स्थिर आधार है। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकरी अपने आर्मेनियाई समकक्ष के आधिकारिक नियंत्रण पर ईरवान गए हैं, जहां बुधवार को उन्होंने आर्मेनिया के विदेश मंत्री और आर्मेनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की। इस मुलाकात में ईरान के उप विदेश मंत्री ने दोनों राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला और उन्हें तेहरान और ईरवान के मध्य संबंधों को विस्तृत करने के लिए बड़ी व मूल्यवान पूंजी करार दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस की अपनी यात्रा का समापन किया और अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ समान खुली और समावेशी सुरक्षा प्रणाली का संकल्प किया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल में समाप्त हुई रूस की राजकीय यात्रा दोस्ती, सहयोग और शांति की यात्रा थी। इस यात्रा में शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ गहन चर्चा की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने नए युग के लिए समन्वय की व्यापक रणनीति, साझेदारी और चीन रूस आर्थिक सहयोग में प्राथमिकताओं पर 2030 से पहले विकास योजना को गहरा करने के लिए दो संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर किए। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत के समक्ष आज पेश किए गए। सूरत की अदालत से आपराधिक मामले में कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दोषारोपण और 2 साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है। हालांकि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है, लेकिन ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी कानून के मुताबिक संसद की सदस्यता खो देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हश मनी मामले में केस चलाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जबकि पुलिस हाई अलर्ट पर है। हालांकि अभियोजन के समय को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अवैध ज़ानी शासन द्वारा एक बार फिर लिबनान के खिलाफ हमले की दी गई धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए हिजबुल्लाह के महासचिव ने कहा है कि लिबनान पर हमला करने का सपना देखने वाले ये जान लें कि प्रतिरोध के जरिए किसी भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अलमनार टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने प्रतिरोध के योद्धा हुसैन अल शामी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवैध अतर्कित फिलिस्तीन के उत्तरी इलाके में हालिया दिनों में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन इलाकों में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं उससे दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और अंत में यह समाचार कि हैती में हिंसा ने भीषण रूप धारण कर लिया है। कैरेबियाई देश हैती में पिछले कई दिनों से जारी हिंसा ने अब तक और भी भीषण रूप धारण कर लिया है। वहां इन दिनों गैंगवार बढ़ती जा रही हिंसा है। इस खूनी संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा और हैती में तेजी से बिगड़ती स्थिति के बीच मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा है कि सामूहिक हिंसा में 530 से अधिक लोगों के जान जा चुकी है। मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रवक्ता मार्टी हीडो ने कहा है कि जनवरी से 15 मार्च तक कुल 531 लोग मारे गए, 300 घायल हुए और 277 लोगों का अपहरण कर लिया गया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
تو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ افغانستان میں بیت المقدس کے پرتیک کے طور پر بنی مسجد میں جاری کام اب انتیم چرن میں ہے۔ اس مسجد کو پوتر رمضان مہینے کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نمازیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں کیول اسی مسجد کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، بلکہ ہر شہر، گاؤں اور محلے کی مسجدوں میں بھی اسی طرح لوگ اللہ کے مہمانوں کے سواگت کے لیے مسجدوں کو سجا رہے ہیں۔ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے بدھوار کو روس کی اپنی یاترا کا سماپن کیا اور امریکہ کی ہند پرشانت رنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے روسی سمکش ولادیمیر پوتین کے ساتھ سمان کھلی اور سماویشی سرکشا پرالی بنانے کا سنکلپ کیا۔ انہوں نے اس دشا میں شانتی وارتا یوجنا کو آگے بڑھانے کی مانگ کی، جس پر یوکرین کے پرمکھ سہیوگی امریکہ سے ٹھنڈی پرتکریا ملی۔ مارچ 2013 میں پہلی بار چین کا راشٹرپتی بننے کے بعد سے شی جن پنگ کی روس کی اس یاترا کو دوستی، سہیوگ اور شانتی کی یاترا بتایا گیا ہے۔ کانگریس سانسد راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جس وقت راہل گاندھی کو سزا سنائی گئی، اس وقت وہ ضلع عدالت میں موجود تھے۔ ساتھ ہی عدالت نے راہل گاندھی کو 30 دن کی ضمانت بھی دی ہے۔ افغانستان میں بیت المقدس کے پرتیک کے طور پر بنی مسجد میں جاری کام اب انتیم چرن میں ہے۔ اس مسجد کو پوتر رمضان مہینے کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نمازیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں کیول اسی مسجد کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، بلکہ ہر شہر، گاؤں اور محلے کی مسجدوں میں بھی اسی طرح لوگ اللہ کے مہمانوں کے سواگت کے لیے مسجدوں کو سجا رہے ہیں۔ رپورٹ پیش کریں ساتھی رویش زیدی۔
افغانستان میں بیت المقدس کے پرتیک کے طور پر بنی مسجد میں جاری صاف صفائی کا کام اب اپنے انتیم چرن میں ہے۔ اس مسجد کو پوتر رمضان مہینے کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نمازیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ استھائی ناگرک کا کہنا ہے کہ جس دن فلسطین میں موجود مسجد الاقصی میں رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف صفائی کا کام شروع ہوا، اسی دن ہم نے یہاں بھی صفائی کا کام آرمبھ کیا تھا۔ افغانستان کی راجدھانی کابل کے سب سے ویست علاقے میں موجود اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں میں کافی اتساہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
ایک سہولت برائے ادائے نماز۔
ایک ان ناگرک کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی کے پرتیک کے روپ میں بنی مسجد میں نماز ادا کرنا ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے۔ ہماری یہی اچھا ہے کہ فلسطین میں موجود مسجد الاقصی زیونی شاسن کے چنگل سے پوری طرح آزاد ہو جائے۔ بیت المقدس میں افطار کرنا ہمارا نعرہ ہے۔ ایک افغان یوا کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ایک دن ہم مسلمانوں کے پہلے قبلے میں نماز پڑھیں گے اور رمضان میں افطار بھی کریں گے۔ فلسطین کی آزادی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں کیول اسی مسجد کی صاف صفائی ہو رہی ہے، بلکہ ہر شہر، گاؤں اور محلے کی مسجدوں میں بھی اسی طرح لوگ اللہ کے مہمانوں کے سواگت کے لیے مسجدوں کو سجا رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد الزہرا میں موجود لوگ سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید نوروز کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو وہیں اللہ کا مہمان بننے پر بھی ایک دوسرے کو بدھائی دے رہے ہیں۔ ایک مدرسے کے استاد شری جواد صالحی بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی آستین کو چڑھا کر مسجد کی صاف صفائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔
پیشواز یہ بہاری میری انشاءاللہ کے
جواد صالحی کہتے ہیں کہ اس بار رمضان کا آگمن بہار کے آگمن کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی شبھ ہے۔
مفہوم از غبار گری کی ما.
مسجد الزہرا کے امام جماعت صالحی کہتے ہیں کہ صاف صفائی رکھنا ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے. جہاں ہم ظاہری طور پر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، وہیں ہمیں اس پوتر مہینے میں اپنے اندر کی بھی صفائی کرنی چاہیے، اپنے پاپوں سے توبہ کرنا چاہیے، اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. جس طرح مسجد میں جمی دھول کو ہم ہٹاتے ہیں، اسی طرح ہمارا پریاس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی گناہ کی دھول ہو تو اس کو اس پوتر رمضان کے مہینے میں صاف اور پاک کر لیں. کابل سے IRIB کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
کانگریس سانسد راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے. جس وقت راہل گاندھی کو سزا سنائی گئی اس وقت وہ ضلع عدالت میں موجود تھے. ساتھ ہی عدالت نے راہل گاندھی کو 30 دن کی ضمانت بھی دی ہے. پوری جانکاری کے ساتھ دلی سے شمشاد کاظمی.
کانگریس سانسد راہل گاندھی کو 2019 میں درج مودی سرنیم والے آپرادھک مانہانی کے معاملے میں گجرات کے سورت کی ضلع عدالت نے دوشی قرار دیتے ہوئے 2 سال کی سزا سنائی ہے. سزا سنائے جانے کے سمے راہل گاندھی ضلع عدالت میں اپستھت تھے. اکت عدالت نے راہل گاندھی کو 30 دنوں کے لیے ضمانت دیتے ہوئے اس نرنے کو اچھ نیالے میں چنوتی دینے کی انومتی دی ہے. راہل گاندھی نے 2019 میں کرناٹک کے کولار میں آیوجت ایک چناوی ریلی کے دوران سرنیم کو لے کر ایک آپتی جنک بیان دیا تھا. انہوں نے کتھت طور پر کہا تھا کہ کیوں سبھی چوروں کا سمان اپ نام مودی ہی ہوتا ہے. بھاجپا ودھائک اور گجرات کے پورو منتری پورنیش مودی نے راہل گاندھی کے بیان کے خلاف ایک یاچیکا داخل کی تھی اور یہ معاملہ بھارتیہ دنڈ سنہیتا کی دھارا 499 اور 500 کے تحت درج کیا گیا تھا. کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا راہل گاندھی 6 ورشوں تک چناؤ نہیں لڑ پائیں گے اور کیا ان کی سنسد سدستا بھی جائے گی. کورٹ کے فیصلے پر پرتکریا دیتے ہوئے لوک سبھا میں کانگریسی نیتا ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ راہل گاندھی سے یہ سرکار ڈرتی ہے، پردھان منتری ڈرتے ہیں، اسی لیے ان کی آواز کو سنسد کے اندر یا باہر دبانے کی ہر سمبھو کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی سنسد سدستا سماپت کرنے کا یہ ایک شڈیانتر ہے.
آج ہندوستان میں ہم جانتے ہیں نہ سدن کے اندر نہ سدن کی باہر راہل گاندھی جی کی ہر قدم پہ یہ لوگ جو ستارول پارٹی ہے راہل گاندھی جی کو ہر قدم پہ ناپتے ہوئے راہل گاندھی کے چھوی کو دھومل کرنے کا ہر سمبھو پریاس کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے.
بھاجپا نیتا اور کیندریہ قانون منتری کرن ریجیجو نے کہا کہ راہل گاندھی جو بھی بولتے ہیں اس سے کیول کانگریس پارٹی کا ہی نقصان ہوتا ہے.
راہل گاندھی جو بھی بولتے ہیں وہ آج کل ایسا ہو گیا کہ اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے. ان کا پارٹی کے لیے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سب کے لیے دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے.
بہار کے پورو اپ مکھیہ منتری اور بھاجپا نیتا سشیل مودی نے کہا کہ میں سورت کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں، میں بھی مودی ہوں اور میں نے بھی راہل گاندھی کے بیان سن کر خود کو اپمانت محسوس کیا تھا. گیات رہے کہ انہوں نے بھی راہل گاندھی کے خلاف پٹنہ ہائی کورٹ میں مانہانی کا ایک مقدمہ درج کرایا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نیائے ملنے کی امید ہے. بھارت میں لوک سبھا چناؤ جیسے جیسے نکٹ آ رہے ہیں سیاسی گھمسان تیز ہوتا جا رہا ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस की अपनी यात्रा का समापन किया और अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ समान खुली और समावेशी सुरक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प किया। उन्होंने इस दिशा में शांति वार्ता योजना को आगे बढ़ाने की मांग की, जिस पर यूक्रेन के प्रमुख सहयोगी अमेरिका से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। मार्च 2013 में पहली बार चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद से शी जिनपिंग की रूस की इस यात्रा को दोस्ती, सहयोग और शांति की यात्रा बताया गया है। रिपोर्ट पेश करें साथ ही रविश जैदी।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस की अपनी यात्रा का समापन किया और अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ समान, खुली और समावेशी सुरक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प किया। चीन की सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल में समाप्त हुई रूस की राजकीय यात्रा दोस्ती, सहयोग और शांति की यात्रा थी। इस यात्रा में शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ गहन चर्चा की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने नए युग के लिए समन्वय की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और चीन रूस आर्थिक सहयोग में प्राथमिकताओं पर 2030 से पहले विकास योजना को गहरा करने के लिए दो संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर किए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को की 3 दिवसीय यात्रा यूक्रेन संघर्ष में शांतिवाहक के तौर पर अपनी भूमिका दर्शाने के लिए की थी। उन्होंने इस दिशा में शांति वार्ता योजना को आगे बढ़ाने की मांग की, जिस पर यूक्रेन के प्रमुख सहयोगी अमेरिका से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। मार्च 2013 में पहली बार चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद से शी जिनपिंग की रूस की इस यात्रा को दोस्ती, सहयोग और शांति की यात्रा बताया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ है और उन्होंने ये भी दोहराया कि बीजिंग का यूक्रेन मुद्दे पर कोई स्वार्थी मकसद नहीं है और न ही वो मार्गदर्शक बना हुआ है। वांग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस की यात्रा दोस्ती, सहयोग और शांति की यात्रा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संघर्ष विराम एवं बातचीत के आह्वान को लेकर चीन द्वारा पेश किए गए 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन मुद्दे के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोतो, अब रमजान महीने की संबंध में पेश हमारा विशेष कार्यक्रम।
ईश्वरीय आतिथ्य। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आज 1 तारीख है। ये वह महीना है जिसमें हम अपने ईश्वर के मेहमान होते हैं। यह मेहमानी भी दूसरी मेहमानियों की भांति सबसे सुंदर और सबसे मीठी होती है। इसका समय भी सीमित होता है। हमको इसके महत्व को समझना चाहिए, इस छोटी अवधि से भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले चलते हैं रमजान महीने के पहले दिन की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं।
अल्लाहुम्मा हे ईश्वर, आज के दिन मेरे रोजे को सच्चे रोजेदारों की तरह स्वीकार कर, मेरी नमाज को सच्चे नमाजियों की तरह स्वीकार कर, और मुझे लापरवाही की नींद से जगा दे और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हे संसार के पालनहार और गुनाहों को माफ करने वाले, मुझे माफ कर दे।
दोस्तों, हम आपको और विश्व के समस्त मुसलमानों को इस मुबारक महीने की बधाई प्रस्तुत करते हैं। इस महीने में हम ईश्वर के क्षमा करने की अनुकंपाओं का लाभ उठाते हैं और अपने वजूद को बुराइयों से पाक करते हैं, ताकि हमारी आत्मा ईश्वर के मार्गदर्शन के प्रकाश से प्रकाशमय हो जाए। शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने रमजान को अपने बंदों की हिदायत के तरीकों में से एक और हजारों महीनों से बेहतर बनाया है। इस साल बसंत के साथ अल्लाह के मेहमानी का महीना आया है। धन्य है वह ईश्वर का वह बंदा जो अवसर से लाभ उठाता है और इस वसंत को अपनी आत्मा के विकास के मौसम में बदल देता है। इस साल बसंत में बहार है, कुदरत की बहार है, कुरान की बहार है और रूहों की बहार है। यह सब हमारे पास एक साथ आए हैं। हमारी दुआ है कि नया साल आप सब के लिए बरकत का साल हो। इस नए रूहानी साल में आपका जीवन दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बरकतों भरा हो।
दोस्तों, रमज़ान का महीना दावत का महीना है, अल्लाह की असीम रहमत के दस्तरखान पर बैठने का महीना है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन ऐसे समय हैं कि जिसमें दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। पहला हर नमाज के बाद का समय, दूसरा जब बारिश हो रही हो, और तीसरा जब अल्लाह अपने बंदों पर अपनी निशानी ज़ाहिर करता है। निशानी उसे कहते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। वो सब कुछ जो हमें एक और एकमात्र ईश्वर की महानता और महिमा को दिखाती है और हमें उसका मार्गदर्शन कराती है। अल्लाह की निशानियों में से रमज़ान से बेहतर और स्पष्ट कौन सी निशानी हो सकती है? रमज़ान का महीना हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि जब हम अल्लाह के मेहमान बनते हैं।
ये मौका रोज़ा रखने का है। यह मौका अल्लाह के कलाम की तिलावत है जिसका असीमित बदला है। यह कुरान की तिलावत है। यह मौका अपने आप में सुधार और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का दुगना बदला है जिसका पैगंबर इस्लाम की हदीस में जिक्र है। हमें अल्लाह से उन चीज़ों की दुआ करनी चाहिए। ये दुआ करनी चाहिए कि वह हमें ये तौफीक दे कि हम इन मौकों से फ़ायदा उठा सकें। यही वजह है कि कहा गया है कि अल्लाह से जो तुम्हारा पालनहार है, सच्ची नीयत और पाक मन से दुआ करो कि तुम्हें रोज़े और कुरान की तिलावत का मौका दे। अल्लाह से ये दुआ मांगिए। हमें इस मौके का बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठाना चाहिए। सहीफ़े सज्जादिया की दुआ में 44वीं दुआ में, जो रमज़ान के महीने में दाखिल होने की दुआ है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह से इस तरह अर्ज़ करते हैं। वे कहते हैं कि इस महीने का रोज़ा रखने में हमारी मदद कर, इस तरह की जिस्म के अंगों से गुना ना हो। इस तरह का रोज़ा हो तो पता चला कि रोज़ा सिर्फ खाने से दूरी और इन जाहिरी कामों से दूर रहने का नाम नहीं है।
दोस्तों, रमजान की अपनी विशेषताएं हैं। इसमें हमारी आत्मा, विवेक और चरित्र अध्यात्म का एक सुंदर अनुभव करते हैं। रमजान का मुबारक महीना ईश्वर की बंदगी के अभ्यास का बेहतरीन महीना है। रमजान के रूप में ईश्वर ने हमें अवसर प्रदान किए हैं कि हम उसके कार्यक्रम के अनुसार कुछ प्राकृतिक एवं हलाल चीजों से भी एक निर्धारित समय के लिए परहेज करें और अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो जाएं। रमजान की शुरुआत के साथ ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और ईमान वालों की रूहों पर अल्लाह की रहमत की बारिशें होती हैं। अब आप ही सोचिए कि इससे ज्यादा फायदेमंद कौन सी बारिश हो सकती है। इस महीने में न केवल हर वाजिब नमाज के बाद बल्कि हर सांस जो अंदर जाती है और हर सांस जो बाहर आती है, आप अपने हाथों को ईश्वर की दया की बारिश के तहत प्रार्थना के लिए उठा सकते हैं। आपका पूरा शरीर ईश्वर की रहमतों, दया और क्षमा की बारिश से भीग जाता है। पैगंबर इस्लाम सिफारिश करते हैं, हे लोगों, ईश्वरीय महीना बरकत, रहमत और क्षमा के साथ आन पहुंचा है। ऐसा महीना जो ईश्वर के निकट सर्वश्रेष्ठ महीना है और उसके दिन समस्त दिनों से सर्वश्रेष्ठ, उसकी रातें समस्त रातों से सर्वश्रेष्ठ और घंटे समस्त घंटों से सर्वश्रेष्ठ हैं।
दोस्तों, इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ ईश्वरीय दया की कुंजी है और अंधकार के लिए प्रकाश है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर की दया की वर्षा से ज्यादा लाभ उठाएं और हमारे अस्तित्व में मौजूद अंधकार को इस अवसर में रुकावट बनने न दें। आइए इस अवसर पर लाभ उठाएं और रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से ही प्रार्थना करना शुरू करें और अपनी प्रार्थनाओं के प्रकाश से अपने अस्तित्व से अंधकार को दूर करें, क्योंकि जब यह अंधकार की ज्वाला हमारे अस्तित्व में जल रही है तब तक हम पर ईश्वर की दया की वर्षा नहीं होगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना के माध्यम से खुद को ईश्वर की दया और क्षमा के करीब लाएं।
हम इंसानों में हर चीज और हर काम का एक तरीका होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से मांगना भी शिष्टाचार है जो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। दुआ का पहला शिष्टाचार स्वच्छ रहना है। दुआ के जरिए हम अपने अंदर की आंतरिक गंदगी को साफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जाहिर को पाक और साफ कर लें। इसलिए कहा गया है कि दुआ करने से पहले हमें चाहिए कि स्नान करें या फिर वुजू करें और फिर उसके बाद अल्लाह के समक्ष हाजिर हों और उससे दुआ करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी कोई बड़ा और मुश्किल काम सामने आए तो वुजू करो और फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ।
दुआ करने का दूसरा शिष्टाचार यह है कि अन्य सभी कार्यों की तरह प्रार्थना की शुरुआत ईश्वर के नाम से की जाए। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरे नाम से अपना कार्य की शुरुआत की, इसलिए अब मेरे ऊपर है कि मैं उसके काम को अंजाम तक पहुंचाऊं और उस पर हर स्थिति में बरकत अता करूं। इसी तरह पैगंबर इस्लाम से रिवायत है कि हर वह दुआ जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू होती है उसे अल्लाह नकारता नहीं है। दुआ करने का तीसरा शिष्टाचार यह है कि इसकी शुरुआत अल्लाह की प्रशंसा और स्तुति से करना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिस दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ और प्रशंसा के बिना होती है वह कहीं नहीं पहुंचती है।
दोस्तों, रमज़ान के पवित्र महीने में जिन दुआओं को पढ़ने पर विशेष रूप से बल दिया गया है उनमें दुआए अबू हमज़ा सोमाली, दुआए सहर और रमज़ान के दिनों की दुआएं हैं। ये सभी दुआएं बहुत ही सुंदर और मनमोहक विषयों पर आधारित हैं। रमज़ान के प्रातःकाल में रात की अतिशय प्रार्थना के गुण पर भी जोर दिया जाता है और आख्यानों में कहा गया है कि ये इस योग्य है कि रमज़ान के पवित्र महीनों की रातों में रात की अतिशयोक्ति ना रह जाए। इस नमाज को रात के आखिरी तिहाई में पढ़ना बेहतर है और इसमें दो रकात शामिल हैं।
कुल मिलाकर रमज़ान के महीने में ईश्वर का जिक्र और गुणगान हो रहा है। ये आत्मनिर्माण की और बंदगी का महीना है। इस महीने में रोज़ेदार ईश्वर की मेज़बानी और प्रेम का लुत्फ उठाते हैं। इस महीने में अल्लाह की बंदगी करने वालों को इस मूल्यवान दावत का फल मिलता है। इसका मूल्यवान फल स्वयं से संपर्क, ईश्वर से संपर्क और बंदों से संपर्क करना है। पैगंबर इस्लाम के मुताबिक ये महानता, गौरव और सम्मान का महीना है और इसे अन्य महीनों पर प्राथमिकता दी गई है। बेहतर होगा कि प्रेम और शुद्ध नियत के साथ इससे लाभान्वित हों और इसके सुंदर दिनों और आध्यात्मिक सुबहों को ईश्वर से बातचीत और प्रेमपूर्वक दुआओं के लिए लाभ उठाएं और कल्याण प्राप्त करें।
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير من صرما ينجي المأثوم من النار رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما خير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار ينجي المأثوم من النار
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम, ईद नवरोज के संबंध में विशेष कार्यक्रम।
श्रोताओं, ईद नवरोज पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
नववर्ष और वसंत के आगमन पर मनुष्य को एक नया एहसास होता है और उसमें नई ऊर्जा भर जाती है। इंसान जब प्रकृति की ओर आकर्षित होता है और नई कलियों के खिलने का नजारा करता है तो आश्चर्यचकित कर देने वाली और महान दुनिया के महत्व को समझता है। उस समय उसकी समझ में आता है कि वसंत इंसान के पुनः उठ खड़े होने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। वह इंसान की जो आमतौर पर निराशा और मायूसी के कारण नुकसान में रहता है।
बसंत की बारिश पुराने पन की धूल और मुरझाहट को धो डालती है और नए नए फूल एवं वनस्पतियां सिर उभारती हैं। ये सब इसलिए है ताकि इंसान प्रकृति की तरह जागरूक होना सीख ले और सचेत हो जाए। इंसान सृष्टि के गुलदान का सबसे श्रेष्ठ फूल है। गतिशीलता और परिवर्तन उसके अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए नववर्ष के आगमन से वो भी खुशी और प्रसन्नता से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है।
दिल और मन की ताजगी और सजावट पवित्रता का प्रमाण है, इसलिए उसे घर और जाहिरी सजावट में सीमित नहीं करना चाहिए। निसंदेह हर नव वर्ष के शुरू में आत्मा और दिल की पवित्रता समस्त पवित्रताओं में सर्वोपरि है, ताकि इंसान का अस्तित्व समस्त गंदगियों, द्वेषों, बुराइयों और मनमुटाव से साफ हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ईश्वर फरमाता है कि ईश्वर क्षमा याचना करने वालों को पसंद करता है और पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है।
नौरोज का दस्तरखान की जिसे हफ्त सीन कहा जाता है, ईरानी घरों का एक आकर्षक है, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं के कंधों पर होती है। हफ्त सीन दस्तरखान पर फारसी भाषा के अक्षर सीन से शुरू होने वाली सात चीजें चुनी जाती हैं। इसके अलावा दस्तरखान पर आईना, कुरान मजीद, शमादान, मुर्गी का रंगीन अंडा, फल, फूल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जार में लाल मछली आदि हफ्त सीन दस्तरखान पर रखे जाते हैं। इस सुंदर दस्तरखान को तैयार करने में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नए वर्ष के आगमन के क्षणों से ठीक पहले घर की जिम्मेदार महिला घर के समस्त सदस्यों को दस्तरखान पर एक साथ बैठाती हैं और समस्त सदस्यों विशेष रूप से अपनी संतान से कुरान की आयतों के पढ़ने और दुआ मांगने की सिफारिश करती हैं।
नौरोज के त्यौहार की एक महत्वपूर्ण ईरानी परंपरा मजारों एवं तीर्थस्थलों की जियारत है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर इस्लाम और उनके परिजनों एवं महान धार्मिक हस्तियों के मजारों की जियारत में अत्यधिक पुण्य है और ईश्वर से निकटता का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। यह पवित्र मजार दुआ के स्वीकार होने और भौतिक बंधनों से रिहाई पाने के लिए बेहतरीन स्थल है। इन पवित्र स्थलों की जियारत करने वाला खुदा को पुकारता है और उसकी प्रसन्नता के लिए नमाज पढ़ता है और इबादत करता है। दुआ करते समय वह पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों को याद करता है, ताकि खुदा उनकी महानता एवं पवित्रता के दृष्टिगत उसकी दुआ स्वीकार कर ले और जियारत करने वाले पर अपनी असीम कृपा करें।
इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पवित्र मजार में भी हर कोई खुदा की असीम रहमत से जुड़ना चाहता है। एक युवा की जिसका पैर टूटा हुआ है और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, मजार के सेवकों की सहायता से मजार से बाहर निकल रहा है। जब उससे ज्यारत के बाद उसकी भावनाओं के बारे में पूछा जाता है तो कहता है, ज्यारत से पहले और उसके बाद इंसान की स्थिति भिन्न होती है। इंसान इमाम रजा अलैहिस्सलाम की ज्यारत के बाद हल्केपन का आभास करता है। किस तरह संभव है कि कोई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनके परिजनों से मोहब्बत करता हो, लेकिन उनके पवित्र मज़ारों की ज्यारत की मनोकामना दिल में नहीं रखता हो? ये सही है कि ईश्वरीय दूतों की ज्यारत खुदा से अधिक निकट होने का एक मार्ग है।
नौरोज आता है ताकि उपेक्षा की गर्द को हमारे चेहरे से धो दे और हमसे कहे कि ताजगी और परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। अगर अभी तक नहीं कर सके हो तो अपने जीवन शैली बदल डालो, अपने दिल को ईश्वर की ओर मोड़ दो और अपनी मान्यताओं में पुनर्विचार करो। संभव है कि इसकी जरूरत पड़े कि तुम्हें अपने विश्वासों और मान्यताओं का पुनर्निर्माण करना पड़े।
बसंत जिस प्रकार ताजगी और खिलने की ऋतु है और सुंदर संसार में ईश्वर के प्रबंधन से पर्दा उठाती है, उसी प्रकार इंसान की प्रगति का मौसम भी है। जब वृक्ष नई टहनियों और नए पत्तों से अपने शरीर को ढकते हैं तो ये हमें संदेश देते हैं कि इंसान भी ठहराव और निराशा के दौर से गुजरकर परिवर्तन और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बसंत प्रकाश को मन में बसाने और मूल वान अवसरों से लाभ उठाने का मौका है।
ईरान के मौखिक साहित्य में नौरोज को विशेष स्थान प्राप्त है। नौरोज संबंधित रीति रिवाज और परंपराएं मौखिक साहित्य की विभिन्न शैलियों का स्रोत है कि जिनमें से कविता, कहानी, कहावत, दुआ और गीत की ओर संकेत किया जा सकता है।
सामान्य रूप से नौरोज खानी करने वाले नौरोज का उत्सव शुरू होने के 15 दिन पहले से गांवों और शहरों में जाते हैं और नौरोज एवं बसंत के बारे में कविताएं गाकर तथा आम तौर से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पवित्र परिजनों की प्रशंसा में कविताएं गाकर लोगों को नववर्ष के आगमन का शुभ संदेश देते हैं और सरल और सादे रागों में शुभ कामनाएं देते हैं। नौरोज खानी सामूहिक कार्य है। सदैव एक व्यक्ति मुख गाने वाले के रूप में प्रमुख नौरोज खान का स्थान ग्रहण करता है और कम से कम एक व्यक्ति तथा कुछ क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति स्वर लगाने वालों या सुर से सुर मिलाने वालों के रूप में सुर मिलाते हैं और प्रमुख नौरोज खान का साथ देते हैं। एक व्यक्ति साज अर्थात संगीत वाद्य बजाता है और दूसरा की जिसे बारकश अर्थात बोझ उठाने वाला कहते हैं लोगों के द्वार पर जाता है।
इंसान के जीवन के शुरुआती दौर में परंपराएं संस्कृति को स्थानांतरित करती थीं और नस्ल अपनी पहली नस्लों से संयुक्त परंपराओं के माध्यम से अपना संबंध सुरक्षित रखती थी। इस प्रकार मानवीय नस्लों के बीच एकता स्थापित होती थी। साहित्य, लोक कथाएं, संस्कृति, राष्ट्रीय साहित्य और पारंपरिक कला ऐसे संचार माध्यम थे जो विगत में नौरोज के रीति रिवाजों के स्थानांतरण का कार्य करते थे। इस बीच कविताएं, कथाएं, कहानियां, चुटकुले और मुहावरे अस्तित्व में आए कि जिन्होंने एक सीने से दूसरे सीने और एक नस्ल से दूसरी तक इस संस्कृति को स्थानांतरित किया। जो कथाएं और कहानियां नौरोज और बहार के आगमन पर सुनाई जाती हैं वे उस दौर की उपज हैं कि जब नौरोज ने ईरान के एक बड़े त्योहार का रूप नहीं लिया था और लोग उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना समझते थे।
दोस्तों, इस दौरान प्रदर्शनी एवं नाटकों ने नौरोज की स्थिरता और सुरक्षा का दायित्व संभाला और नौरोज को बाकी रखने में सहायता की। विभिन्न इलाकों में प्रदर्शनियों का आयोजन, उनका समय, यहाँ तक कि उनके गीत एक दूसरे से भिन्न हैं और ये अंतर ईरान में सांस्कृतिक विविधता के कारण है। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनियों का विषय बहार का आगमन और उसकी खुशियाँ हैं। अलग अलग समूह उसे अपनी शैलियों में पेश करते हैं। प्रकृति, धार्मिक विश्वासों की प्रशंसा, लोगों को प्रसन्न रहने की सिफारिश एवं आपसी मतभेद एवं द्वेष दूर करने पर बल इन प्रदर्शनियों के मूल विषय हैं। इन प्रदर्शनियों में कलाकार शीत ऋतु की रातों की निशानी के रूप में अपने चेहरों को काला करते हैं और सर्दी का मौसम समाप्त हो जाने एवं बहार आने की खुशी में लाल वस्त्र पहनते हैं। वे जीवन के गीत गाते हैं और खुशी से लोगों को बहार के आने की सूचना देते हैं।
समय बीतने के साथ साथ इन प्रदर्शनियों में बदलाव हुआ और अब इन प्रदर्शनियों के कलाकारों में से हाजी फिरोज नामक चरित्र को आज भी नौरोज का त्योहार आने पर गांवों और शहरों की सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है। इस चरित्र को जीवंत करने वाले लोग लाल कपड़े पहनकर और चेहरा काला करके सड़क पर निकल जाते हैं और गा बजाकर लोगों को नौरोज व बहार के आने की शुभ सूचना देते हैं। इनका लाल वस्त्र बहार की प्रफुल्लता का सूचक है, जबकि चेहरे की कालिख सर्दी के दिनों की याद दिलाती है जो बाहर से टकरा रही है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख है कि हाजी फिरोज की जड़ें मेसोपोटामिया की संस्कृति से जुड़ी हैं। कुछ दूसरे लोग इसे बहुत प्राचीन और बेबीलोन के समय से संबंधित मानते हैं। حاجی فیروز کی اتپتی اور اتہاس جو بھی ہو، لیکن مہتوپورن یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے خوشیاں لاتا ہے اور انہیں شبھ سوچنا دیتا ہے، اسی لیے اسے نوروز کے مہتوپورن سانسکرتک پرتیکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ حاجی فیروز کی ہی طرح ایک دوسرا چرتر جو سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو نوروز کی مبارکباد دیتا ہے اور نوروز کی راتوں میں آیوجت ہونے والے سماروہ میں بچوں کے لیے اپہار لاتا ہے، امو نوروز ہے۔ امو نوروز کی ویش بھوشا سفید ہوتی ہے، اسی طرح سے سفید داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ میں چھڑی لے کر چلتا ہے۔ امو نوروز کے بارے میں کئی ساری کہانیاں اور قصے مشہور ہیں، ان میں سے ایک امو نوروز اور ننے سرما یا بوڑھی سردی ہے۔ ننے سرما شانتی اور کپ کپاتی ٹھنڈ کے پرتیک کے روپ میں جاتی ہیں، تو وہیں امو نوروز وکاس اور نئے پن کے پرتیک کے روپ میں آتے ہیں۔ تو دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے عید نوروز کے سمبندھ میں ہمارا وشیش کاریکرم، اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ ودیش منتری نے یوکرین کی اکھنڈتا پر بل دیا ہے۔ ایران کے اپر ودیش منتری نے کہا ہے کہ ایران چھیتر میں شانتی و سرکشا کا استھر آدھار ہے۔ ہیتی میں ہونے والی ہنسا میں اب تک 530 سے ادھک لوگوں کی جان چلی گئی، اور راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو شوتو، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں، خدا حافظ، شبھ راتری۔ Oh,